पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अर्पा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित।
पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार इस वक्त आप सुन रहे हैं अर्पा रेडियो पर। आइए सुनते हैं हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत विषय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह प्रजापति का व्याख्यान।
सपने तो अपने होते हैं, उन्हें पूरा कीजिए, उन्हें नए आयाम दीजिए। उच्च शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से।
प्रिय विद्यार्थियों, आज हम स्नातक प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम हिंदी भाषा भाग एक के अंतर्गत पल्लवन पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि शब्द से भी आप जान गए होंगे कि पल्लवन क्या है, अमूमन आप कहीं भी निकलते हैं तो किसी भी पेड़ पौधे झाड़ियाँ इत्यादि आपकी नज़र में आते ही होंगे। ये झाड़ियों की पेड़ और पौधों के जब अग्रभाग को देखेंगे तो छोटे छोटे पत्ते निकलते हुए वह विकसित करते जाता है। यह विकास ही पल्लव है। वस्तुतः पल्लवन की जब बात करते हैं, जब उसके अर्थ और पर्याय पर जाते हैं तो पल्लवन विस्तार की एक प्रक्रिया है। जैसा लता झाड़ी पौधा अथवा वृक्ष नवीन छोटे कोमल पत्तों सहित अपनी शाखाओं का विस्तार करता है तो उसे पल्लव होना कहा जाता है। ठीक इसी तरह हिंदी भाषा में वाक्य अथवा वाक्यांश के सार्थक भाव विस्तार को पल्लवन कहा जाता है। आइए अब पल्लवन शब्द अर्थ और पर्याय के संबंध में जान लेते हैं। पल्लवन शब्द पल्लव में अन प्रत्यय से मिलकर बना है। पल्लव का अर्थ है कोपल। जैसा कि मैंने बताया, किसी लता झाड़ी वृक्ष इत्यादि की शाखाओं के विकास या विस्तार प्रक्रिया में उसके अग्रभाग के नए छोटे पत्तों को पल्लव कहा जाता है और पल्लव का विकसित होना ही पल्लवन है। पल्लवन का शाब्दिक अर्थ किसी सुगठित या गुम्फित विचार का विस्तार करना है। पल्लवन अंग्रेजी के एक्सपेंशन का पर्याय है। पल्लवन को विशदीकरण अथवा विस्तारण भी कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, हम अपने जीवन में कई सूत्र वाक्य व्यवहार में लाते हैं। उदाहरण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिना, सेवा परमो धर्म, मन के हारे हार, मन के जीते जी, ऐसे अनेक वाक्य शब्दांश हैं जो प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कहीं न कहीं सुनता है या बोलता है। इन वाक्यों में निहित भाव मात्र कुछ शब्दों में स्पष्ट नहीं किए जा सकते, लेकिन पल्लवन से इन वाक्यों के मूल भाव सहजता से स्पष्ट किए जा सकते हैं। इसलिए पल्लवन को एक ऐसी लघु रचना अथवा लघु निबंध कह सकते हैं जिसमें किसी कथन अथवा सूक्ति को विस्तृत करके लिखा जाता है। पल्लवन में मूल पाठ का मौलिक भाव खंडित किए बिना उसी रूप में सरल सहज संप्रेषित हो जाए, यह पल्लवन का मुख्य उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों, पल्लवन की अनेक विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। इनमें से डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहा जाता है। यह परिभाषा आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना के पृष्ठ क्रमांक 284 में है। पल्लवन की चर्चा करते हुए अनेक ऐसे शब्द हैं जो पल्लवन से मिलते जुलते हैं। आइए हम इन शब्दों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इन शब्दों में पल्लवन और व्याख्या। वस्तुतः पल्लवन और व्याख्या एक्सप्लेनेशन में अंतर है। व्याख्या का उद्देश्य मूल पाठ की विशेषताओं को उद्घाटित करना होता है। इसके लिए व्याख्याकर्ता अपनी विवेचना शैली का उपयोग करते हुए मूल पाठ की व्याख्या करता है। मूल पाठ में निहित भाव स्पष्ट करने के साथ साथ समालोचना टीका टिप्पणी भी की जा सकती है। पल्लवन में यह स्वतंत्रता हमें नहीं होती है। पल्लवन में विचार अथवा भाव मात्र का विस्तार होता है जो सामान्यतः एक या दो अनुच्छेदों में अव्यक्त हो जाता है। इसी तरह एक अन्य शब्द है आशय। पल्लवन और आशय में भेद है। आशय का आधार स्पष्ट करने से है, इसका आकार सुनिश्चित नहीं, यह आवश्यकता अनुसार बड़ा या छोटा हो सकता है। आशय में यह ध्यान रखा जाता है कि वह सारगर्भित और स्पष्ट हो, इसका मूल उद्देश्य स्पष्टता है, जबकि पल्लवन में सारगर्भित और स्पष्टता के साथ वाक्य का मूल भाव सुरक्षित हो, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। विद्यार्थियों, ऐसा ही एक और शब्द है भावार्थ। भावार्थ अर्थात सब्सटेंस। पल्लवन और भावार्थ दोनों में भाव मुख्य है, लेकिन दोनों में मूल पाठ और विस्तार के आकार में अंतर है। भावार्थ के लिए सामान्यतः एक अनुच्छेद रचना अवतरण की आवश्यकता होती है। इसमें निश्चित नहीं किया जा सकता कि उसका आकार छोटा या बड़ा होगा, जबकि पल्लवन वाक्य का किया जाता है, वाक्यांश का किया जाता है, जिसका आकार सामान्यतः एक या दो अनुच्छेद निर्धारित होता है। आइए अब पल्लवन के सामान्य नियम के संबंध में जान लेते हैं। पल्लवन करते समय मूल वाक्य अथवा वाक्यांश में निहित सूक्ति, लोकोक्तियां, मुहावरे तथा तथ्य को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ताकि सूत्र वाक्य में निहित मूल भाव अच्छे से समझ में आ जाए। वाक्य अथवा वाक्यांश में मूल भाव के अतिरिक्त संबंध सहायक भावों तथा गुम्फित विचारों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। वाक्य अथवा वाक्यांश के भाव क्रमबद्ध अनुच्छेदों में लिखना चाहिए, ताकि मूल भाव प्रस्तुत करते समय कोई सहायक या गौण भाव अथवा विचार छूटने ना पाए। मूल भाव के स्पष्ट करने के लिए मूल वाक्य अथवा वाक्यांश में निहित तथ्यों का सहारा लेना चाहिए। मूल वाक्य अथवा वाक्यांश के भावों को लिखते समय पल्लवनकर्ता को अपने विचार, टीका टिप्पणी शामिल नहीं करनी चाहिए। भावों को सहज, सरल, स्पष्ट भाषा लिखना चाहिए। पल्लवन अन्य पुरुष एवं व्यास शैली में लिखना उत्तम माना जाता है। आइए पल्लवन की लेखन प्रक्रिया को जान लेते हैं। सामान्यतः पल्लवन लेखन की प्रक्रिया 6 चरणों में संपन्न की जा सकती है। ये चरण हैं: पहला, अध्ययन, वाक्य अथवा वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना, आवश्यक बिंदुओं को चिन्हांकित करना। यदि एक बार में भाव स्पष्ट हो तो अच्छा है, यदि ना हो तो पुनः उस मूल पाठ को पढ़ना और भाव स्पष्ट कर लेना चाहिए। दूसरा, मूल एवं सहायक भाव। सामान्यतः मूल पाठ में जो भाव होता है उसके कई सहायक भाव होते हैं, उसकी पहचान बहुत जरूरी है। पल्लवन करते समय मूल पाठ में निहित सहायक भावों को पहचान जरूरी है। तीसरा, लेखन। सार्थक और प्रभावी प्रस्तुति के लिए भाव अथवा विचारों का क्रमानुसार लेखन अनिवार्य होता है। चौथा, तथ्यों एवं उदाहरणों का समावेश। मूल पाठ में निहित भाव को पुष्ट करने वाले तथ्य, उदाहरण, प्रमाण, संदर्भ लिखना आवश्यक होता है। पल्लवन करते समय इस शब्द वाक्य उदाहरण प्रमाणों को भली भांति समावेश किया जाना चाहिए। पांचवा है प्रारूप। मूल भाव, सहायक भाव, तथ्य, उदाहरण का समावेश करते समय मूल पाठ का प्रारूप बना लेना उचित होता है। यह प्रारूप पल्लवन के सफलता के लिए आवश्यक है। छठवां है प्रारूप का परीक्षण एवं अंतिम स्वरूप देना। प्रारूप का परीक्षण एवं अंतिम स्वरूप देने में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे क्या पल्लवन में मूल वाक्य का भाव और सहायक तथा गौण भाव शामिल हो गए हैं, क्या आवश्यक तथ्य, उदाहरण, प्रमाण आदि शामिल हो गए हैं, क्या पल्लवनकर्ता के व्यक्तिगत भाव अथवा विचार हटा दिए गए हैं, क्या भाषा व्याकरण की त्रुटियां सुधार करके भाषा का मानक स्वरूप लिखा गया है, पल्लवन अन्य पुरुष और परिच्छेद में लिखा गया है। इन छोटी छोटी बातों को जब ध्यान में रखकर आप पल्लवन करेंगे तो यह प्रक्रिया बड़ी आसान लगेगी आपको। आइए आगे हम पल्लवन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। इनको भी बिंदु ग्रुप में इस तरह से समझा जा सकता है। पहला, अध्ययन और कल्पना शक्ति। यह बहुत आवश्यक है। पल्लवनकर्ता अध्यावसायी हो, बहुत अध्ययन करता हो और कल्पनाशील हो, तब तो पल्लवन बहुत बेहतर कर सकता है। दूसरी जो विशेषता है वह सृजनशीलता है। पल्लवनकर्ता अपनी बौद्धिक क्षमता और कल्पना शक्ति के आधार पर सृजनात्मक और सार्थक अभिव्यक्ति दे सकता हो, ऐसी अपेक्षा होती है। स्पष्टता और भाव विस्तार। वाक्य अथवा वाक्यांश, लोकोक्ति, मुहावरे महापुरुषों या कवियों की प्रसिद्ध उक्तियां हो सकती हैं, जिनका विस्तार स्पष्ट एवं विवाक होना चाहिए। यह स्पष्टता ही उस पल्लवनकर्ता की पहचान बनाने में कामयाब होती है। स्पष्टता एवं भाव विस्तार। वाक्य अथवा वाक्यांश, लोकोक्ति, मुहावरे महापुरुषों या कवियों की प्रसिद्ध उक्तियां हो सकती हैं, जिनका विस्तार स्पष्ट और विवाक होना चाहिए। मौलिकता। मूल वाक्य अथवा वाक्यांश के भाव को अखंडित रूप से प्रस्तुत करना। रोचकता। प्रस्तुतिकरण करते समय रोचकता बनी रहनी चाहिए ताकि पाठक बन सकें। उन्होंने पल्लवन पढ़ते या सुनते समय एक आनंद की अनुभूति हो सके। भाषा और शैली। पल्लवन की भाषा स्पष्ट, सरल, व्याकरण सम्मत तथा शैली रोचक होनी चाहिए, यह उसकी विशेषता है। प्रवाहमयता। अभिव्यक्ति क्रमबद्ध और प्रवाहशील होनी चाहिए ताकि विषय आसानी से समझ में आ जाए। ऊपर कही हुई पल्लवन की विशेषताएं किसी भी पल्लवनकर्ता को किसी भी विशिष्ट पल्लवन के लिए आवश्यक मानी जानी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम पल्लवन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में चर्चा करते हैं। इनमें मूल पाठ के भावों के अनुरूप पल्लवन हुआ है अथवा नहीं। यदि मूल भाव स्पष्ट नहीं हुआ है तो सहायक और गौण भाव की सहायता से पल्लवन में मूल भाव स्पष्ट किया जाना चाहिए। यदि कोई आवश्यक प्रसंग अथवा अप्रासंगिक विवरण आ गया हो तो उसे निकाल देना चाहिए। पल्लवन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी लिख रहे हैं उनका सीधा संबंध मूल वाक्य अथवा वाक्यांश से हो। भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से स्पष्ट, मौलिक तथा सरल होनी चाहिए। यदि भाषा कहीं कठिन हो तो सरल शब्दों का चुनाव करके पल्लवन सहज और ग्राह्य बनाया जाना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि पल्लवन न अधिक बड़ा हो न छोटा बल्कि मध्यम आकार का हो। व्याकरण में विराम चिन्ह तथा वर्तनी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। व्यास शैली पल्लवन का मूल आधार है। सामान्यतः व्यास शैली में ही पल्लवन किया जाना चाहिए। अतः इस शैली में लेखन का अभ्यास करने से पल्लवन और निखर जाता है। पल्लवन की रचना हमेशा अन्य पुरुष में होनी चाहिए। अब आगे हम पल्लवन के महत्व के विषय में चर्चा करते हैं। वर्तमान व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में संक्षेपण ने अवश्य अपना स्थान बना लिया है, लेकिन हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में मानवीय दायित्वों के निर्वहन के लिए तथा सामाजिक उन्नति के लिए आज भी पल्लवन का अपना एक अलग महत्व है। प्राचीन साहित्य, विद्वानों के अनेक श्रेष्ठ कथन, उनके व्यक्त या रचित साहित्य के सूत्रवाक्य, पंक्तियाँ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ वर्तमान में वाचिक या लिखित रूप में प्रचलित हैं। ये आज भी मानव जीवन और समाज के लिए प्रासंगिक हैं, महत्व की हैं। यही कारण रहा है कि विद्वानों द्वारा ऐसे वाक्य अथवा वाक्यांशों का पल्लवन किया जाता रहा है। वेद से उपनिषद, पुराण, महापुराण लिखे गए हैं। कालांतर में इन ग्रंथों में गुम्फित वाक्यों, विचारों का पल्लवन अथवा व्याख्याएं किया गया है। इसका मुख्य कारण है कि इन वाक्यों का भाव सरल और सहज हो ताकि जन सामान्य तक इसकी पहुंच बन पाए।
आयुर्वेद वनौषधियों का नूतन योग प्रबल हो, ज्ञान कर्म की नई दृष्टि हो, गति की राह विमल हो, गति की राह विमल हो।